समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
ये जीवन है, इस जीवन का
इंसान के अंदर अगर संतोष है तो वो सबसे अमीर है, अगर शांति है तो वो सबसे सुखी है, अगर दया है तो वो सबसे श्रेष्ठ है, और अगर स्वस्थ है तो वो सबसे भाग्यशाली है, और यही उत्तम जीवन भी है। तो इसी प्रारंभिक सुविचार के साथ, एक नई नवेली सुबह की ढेर सारी नई चुनौतियों के साथ, मैं समाचार पत्र का कार्यक्रम आज सवेरे लेकर आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं श्रोताओं के ही अपने रवि कपूर और रेणु कटारिया। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम रवि, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेरिन वी विल शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 18th ऑफ नवम्बर। तो रवि, शुरुआत करें पहले हेडलाइन से।
जी बिल्कुल, शुरू करते हैं सिलसिला मुख्य समाचारों का।
जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में कल छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में श्री मोदी ने कहा कि एक ओर जहां दुनिया व्यवधानों से डरी हुई है, वहीं भारत सुनहरे भविष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ रहा है।
आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। मैं कह सकता हूं भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम वैश्विक संकटों के बीच भी भारत की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है।
साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही, और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है।
In Bihar, newly elected MLAs of NDA will meet in Patna tomorrow to elect their leader. 202 NDA MLAs belonging to 5 constituent parties, BJP, Janata Dal United, Lok Janashakti Party, Ram Vilas, Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha will participate in the meeting. Chief Minister Nitish Kumar is likely to be elected once again as leader of NDA Legislature Party in Bihar. The leader of the NDA Legislature Party will then stake claim to form a new government in the state. Before this, BJP and JDU will elect their Legislature Party leaders in separate meetings. These meetings are also likely to take place tomorrow. Meanwhile, discussions are continuing between the two major NDA constituents, BJP and JDU, regarding the structure of the government, the size of the cabinet and the distribution of ministerial posts among various constituents. For the final decision and discussions with top BJP leaders, JDU Working President Sanjay Jha and Senior Party Leader Rajiv Ranjan Singh reached New Delhi last night. Preparations for the swearing-in ceremony at Patna's historic Gandhi Maidan are being finalized. The ceremony will be held on Thursday. Prime Minister Narendra Modi, Chief Ministers of BJP rural states and senior NDA leaders are expected to attend the swearing-in ceremony of the new government.
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में शामिल आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कश्मीर निवासी जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभिकरण के अनुसार वानी ने कथित तौर पर इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। इस हमले में 10 लोग मारे गए थे और 25 घायल हुए थे। एजेंसी ने खुलासा किया है कि वानी ने विस्फोट से पहले ड्रोन में बदलाव किए और रॉकेट बनाने का प्रयास किया। वानी हमले का एक षड्यंत्रकारी है और उसने आतंकवादी उमर नबी के साथ मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी।
Environment Minister Bhupendra Yadav has said that India will publish its revised nationally determined contribution NDC for the 2035 period by December. Addressing the high-level segment of the UN COP30 climate summit in Belém, Brazil, Mr. Yadav said, "Climate change is real and imminent due to unsustainable growth and development patterns." He urged developed nations to achieve net zero targets ahead of their current timelines. Environment Minister said implementation of climate goals must be adequate, accessible and affordable and free from restrictive intellectual property barriers. Mr. Yadav said India's newly launched nuclear mission and green hydrogen mission will further accelerate its progress towards achieving net zero by 2070. The country will also release its first biennial transparency report soon, he said.
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अक्टूबर की अवधि में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाओं को मिलाकर पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8% बढ़कर 4,91,80,00,000 अमरीकी डॉलर हो गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वस्तु निर्यात में 0.62%, जबकि आयात में 6.37% की वृद्धि हुई। इस वृद्धि में एक प्रमुख योगदान गैर पेट्रोलियम निर्यात में लगातार वृद्धि का भी रहा है। वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों के दौरान 3.92% की वृद्धि दर्ज करते हुए गैर पेट्रोलियम निर्यात 2,19,90,00,000,00 का रहा। देश का वस्तु व्यापार घाटा सितंबर महीने की 32,15,00,00,000 की तुलना में अक्टूबर महीने में 41,68,00,00,000 हो गया। ये मुख्य रूप से सोने और चांदी के आयात में वृद्धि के कारण हुआ। अक्टूबर महीने में सोने के आयात में 199.2% की वृद्धि हुई। इस बीच वार्षिक आधार पर पिछले महीने वस्तु निर्यात 11.8% की गिरावट के साथ 34,38,00,00,000 रहा। इस दौरान वस्तु आयात 16.63% बढ़कर 76,06,00,00,000 रहा।
The UN Security Council last night approved a US plan for Gaza that authorizes an international stabilization force to provide security in the devastated territory and envisions a possible future path to an independent Palestinian state. Russia, which had circulated a rival resolution, abstained along with China on the 13-0 vote. The vote was a crucial next step for the fragile ceasefire and efforts to outline Gaza's future following 2 years of war between Israel and Hamas. Arab and other Muslim countries that expressed interest in providing troops for an international force had signaled that Security Council authorization was essential for their participation. The U.S. resolution endorses President Donald Trump's 20-point ceasefire plan, which calls for a yet-to-be-established Board of Peace as a transitional authority that Trump would head. It also authorizes the stabilization force and gives it a wide mandate, including overseeing the borders, providing security and demilitarizing the territory. Moving on to sports, in shooting, Olympian Gurpreet Singh clinched the silver medal in the men's 25-meter center pistol fire event at the ISSF Rifle Pistol World Championships in Cairo, Egypt. Gurpreet settled for silver after losing on inner tens to Ukraine's Pavlov Korostilov. This was Gurpreet's second individual medal in the World Championships, the first also being a silver won back in 2018 at Changwon in the 25-meter standard pistol event. India ended their World Championship campaign in third place with a total of 13 medals, including 3 gold, 6 silver and 4 bronze behind China and Korea.
तो ये थे अब तक के कुछ मुख्य समाचार। और अब हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के समाचारों पर एक नजर। तो वेनु, शुरुआत कर रही हैं हैदराबाद के समाचारों
से। जी बिल्कुल। The Telangana state government has decided to soon conduct elections only to the Gram Panchayats, deferring polls to other offices of rural local bodies following legal hurdles to its move to provide 42% reservation to backward classes and local bodies. Briefing the media after a meeting of the state cabinet last evening, State Information and Public Relations Minister P. Srinivas Reddy said the cabinet decided to hold the elections only to Gram Panchayats. However, the ruling Congress will allot 42% seats to the BCs as its efforts to allocate the said quotas to BCs in the local bodies officially did not bear fruit. The minister said the government will take a decision on conducting the polls to other local bodies, including Jilla Parishad territorial constituencies, after the matter is finally decided in courts. Meanwhile, the Telangana cabinet approved a bill aimed at ensuring the welfare of gig workers. State Labour Minister G. Vivek Venkataswamy said the bill will be introduced in the assembly soon for passage.
दिल्ली की खबर लेते हैं रेनू।
जी बिल्कुल।
दिल्ली विधानसभा में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय युवाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विजयेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह की प्रभावी रणनीति ने नक्सलवाद के उन्मूलन के संकल्प को नई दिशा और निर्णायक गति दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में स्थानीय समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ने और विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयास अभूतपूर्व परिणाम दे रहे हैं। इस अवसर पर नक्सल प्रभावित राज्यों के 8 जिलों से आए 200 युवा प्रतिभागियों और 20 अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।
मूविंग ऑन टू चेन्नई मेट्रो रवि, तमिल नाडु साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर एट चेन्नई विल गेट एन इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज द सेंटर प्लान्स टू अपग्रेड इट्स एग्जिबिट्स इन द स्पेस गैलरी। It also plans to exhibit India's latest space missions, Chandrayaan, Mangalyaan, and the upcoming Gaganyaan missions, and has sought replicas from ISRO for the same. The Executive Director K. Shanmuga Sundaram of the Tamil Nadu Science and Technology Centre has said that there are plans to exhibit interactive displays by providing an immersive experience to students. He said that they will try to recreate the space station and add facilities such as a dummy rocket launch by students to inspire them. He said ISRO has responded positively to the request and has invited officials for further discussion. The center's ocean gallery will also be upgraded with the help of National Institute of Ocean Technology. And there's one more news from Chennai Metro, Ravi, that I have. IIT Madras, in partnership with the Indian Railways Finance Corporation, inaugurated the nation's first single-cell omics translational research laboratory yesterday. IRFC has sanctioned CSR grant of 10.83 crore rupees to establish the lab within IIT Madras's Department of Medical Sciences and Technology. This landmark initiative is poised to significantly accelerate India's journey in precision healthcare and drug discovery by bridging engineering and medical sciences. The state-of-the-art Scott Lab will facilitate research at an unprecedented cellular level, focusing on early diagnosis, disease prognosis, biomarker discovery, and drug screening across a spectrum of diseases, including cancer, cardiovascular, infectious, inflammatory, metabolic, and other non-communicable diseases. The facility is equipped to accelerate research in single-cell biology and translational healthcare innovation, ultimately developing personalized treatment strategies.
और रेनू, अब मैं आपको और श्रोताओं को लिए चलता हूँ महाराष्ट्र।
जी बिल्कुल।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र के सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विकसित महाराष्ट्र 2047 रोडमैप पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को अपनी वर्तमान शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध उत्पादन, बुनियादी ढांचे और रैंकिंग का आकलन करना चाहिए और सुधार के लिए समयबद्ध योजनाएं तैयार करनी चाहिए। श्री फडणवीस ने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कौशल आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मजबूत विश्वविद्यालय उद्योग साझेदारी का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय तेजी से प्रगति कर रहे हैं और कहा कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सार्वजनिक संस्थानों को गुणवत्ता बढ़ाने की आवश्यकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव बी वेणुगोपाल रेड्डी ने एनआईआरएफ रैंकिंग बढ़ाने, शिक्षण मानकों में सुधार, उच्च टीआरएल अनुसंधान और पेटेंट को बढ़ावा देने और महाराष्ट्र को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने पर एक प्रस्तुति दी।
और रवि, आप एक चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी बहुत सारी मेट्रो न्यूज जो है वो इनोवेशंस पे और ट्रीटमेंट पे और बहुत कुछ एआई पे रिलेटेड होती जा रही है अभी तक, और इसी सिलसिले में हमारी बेंगलुरु मेट्रो भी उसी से कुछ मिलती जुलती है।
अच्छा, तो बताइए ना क्या है खबर।
जी, सो कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया विल लॉन्च अ कॉम्पैक्ट अफोर्डेबल एआई रेडी पर्सनल कंप्यूटर नेम्ड कियो टुडे। इट इज डेवलप्ड बाय क्योनिक्स, अ गवर्नमेंट बॉडी दैट बिगैन विद objective of promoting electronics industries in Karnataka. He will launch this computer at the inauguration of Bengaluru Tech Summit, where its price will also be disclosed. KIO stands for Knowledge Driven, Economical, Open Source and is built indigenously on RISC-V processor with a Linux-based OS featuring 4G, Wi-Fi, Ethernet, USB-A and USB-C ports, HDMI and audio jack support. It comes fully loaded with learning, programming and productivity tools. Basically designed for school children and college students, KIO on-device AI core enables AI to run locally without internet access. It comes preloaded with Budh, an AI agent trained on the Karnataka Desert school syllabus to assist students even in low connectivity regions. Qionics has designed and developed this affordable computer with an objective of deploying them across schools, universities, small businesses, government offices and homes, creating direct pathways for digital learning, skilling and entrepreneurship.
और रेनु भाई, अब आपको मैं ले चलता हूँ पश्चिम बंगाल कोलकाता की ओर। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा करने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच एफएलसी की कार्यशाला में शामिल होने के लिए आज पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। प्रधान सचिव एसबी जोशी और मलय मलिक, उप सचिव अभिनव अग्रवाल कोलकाता उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो ये थे अब तक के कुछ मेट्रो समाचार। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे रवि और रेणु के साथ, और कार्यक्रम आज सवेरे में अब बात मौसम की। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरा छाए रहने की संभावना है। वैसे आज जब मैं आ रहा था, और शायद जब आप भी आ रही होंगी, आपने नोटिस किया होगा कि फॉग था।
किया है कि फॉग था
जी। तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी सुबह कोहरा छाया रहेगा और बाद में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
एंड चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 27 डिग्रीज। बेंगलुरु इज जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी 17 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। एंड हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 15 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस।
तो रेनु, इस मौसम में यानी कि कोहरे वाले मौसम में हम जैसे लोग जो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग आते हैं ऑफिस में ड्यूटीज के लिए, तो उनको बहुत ही ध्यान से ड्राइव करने की जरूरत है।
बिल्कुल।
और आइए अब पलट लेते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या क्या हुआ।
यस रवि, आज जो दिन हम बात करना चाहते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हीलिंग ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज एंड वायलेंस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड टुडे ग्लोबली। दिस डे रीअफर्म्स दैट सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इज अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अ पब्लिक health problem with significant consequences for global health and development. Sexual abuse adversely affects the health of children and adolescents. Healthcare providers are in a unique position to provide an empathetic response to children and adolescents who have been sexually abused. Such a response can go a long way in helping survivors recover from the trauma of sexual abuse.
वैसे इसी विषय पर रेनू कल मुझे एक हिंदी अकादमी द्वारा प्रायोजित नाटक देखने का भी मिला सौभाग्य. तो बहुत ही अच्छा नाटक था और बहुत ही अच्छा संदेश उसमें समाज को दिया गया था.
Yes, so now let's go to the year 1477, Ravi. On this day, William Caxton, a pioneering English printer, published Dykes and Sages of the Philosophers, the first book dated, printed in England.
जी, 1727 में आज के दिन महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की और शहर के वास्तुकार बंगाल के विद्याधर चक्रवर्ती थे. 1772 में आज के दिन पेशवा माधवराव प्रथम के छोटे भाई नारायण राव ने गद्दी संभाली. 1918 में आज के दिन उत्तर पूर्वी यूरोपीय देश लातविया ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा की थी.
On this day, Ravi, in 1928, Walt Disney released Steamboat Willie, the first animated film with sound to feature Mickey Mouse. On this day in the year 1956, Morocco's Independence Day is being observed today to commemorate the nation's independence from French and Spanish rule.
1969 में आज के दिन INS विराट को ब्रिटिश रॉयल नेवी में कमीशन्ड किया गया था.
And on this day in the year 1963, the first push-button telephones debuted in the United States, eventually replacing most rotary dial models.
2013 में आज के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर मावेन यान को भेजा था.
In 2017, on this day, Manushi Chiller was crowned Miss World 2017 at an event which took place in Sanya, China.
और अब समय हो गया है कुछ विशेष महानुभावों की पुण्यतिथियों, जयंतियों और जन्मदिन के बारे में बात करने का.
बिल्कुल.
तो इस क्रम में आज सबसे पहला नाम है मेजर शैतान सिंह का, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय व्यक्ति हैं और इन्हें यह सम्मान 1962 में मरणोपरांत मिला. आपका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 और शहादत हुई 18 नवंबर 1962 को. चीन का वो युद्ध जिसमें मेजर शैतान सिंह ने अपना पराक्रम दिखाया, 1962 में आक्साई चीन सीमा विवाद से शुरू हुआ था. मेजर शैतान सिंह का शौर्य पराक्रम चीन के खिलाफ लड़ते हुए रेजांग ला मोर्चे पर अंतिम बार 18 नवंबर 1962 को नजर आया. वे चुशूर सेक्टर में 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की गोला बारूद से लैस भारी सेना का सामना कर रहे थे. उस मोर्चे पर उन्होंने अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व क्षमता और देश के प्रति गहरी समर्पण भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था.
हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम.
Today we are remembering Zubeen Garg, who was an Indian playback singer, music director, composer, songwriter, music producer, film director, film producer, actor and philanthropist. His contributions are mostly attributed in Assamese, Bengali and Bollywood films and music. He was regarded as one of the influential musicians in Assam and was reportedly the highest paid singer in Assam or Ravi. Over a career spanning 33 years, he recorded over 40,000 plus songs. Aur yahan par kyun na hum ek bahut hi pyara sa gana unki pyari si awaaz mein sun lete hain.
Ji, zarur.
जाने क्या चाहे मन वावदा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला,
और अब बात करते हैं भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक रहे बटुकेश्वर दत्त के बारे में, जिनका जन्म हुआ 18 नवंबर 1910 और निधन हुआ 20 जुलाई 1965 को। देश ने सबसे पहले 8 अप्रैल 1929 को उन्हें उस समय जाना रेणु जब वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट के बाद गिरफ्तार किए गए। उन्होंने आगरा में स्वतंत्रता आंदोलन को संगठित करने में उल्लेखनीय कार्य किया था। सन 1924 में कानपुर में बटुकेश्वर दत्त की भगत सिंह से भेंट हुई। इसके बाद उन्होंने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के लिए कानपुर में काम करना शुरू किया और इसी क्रम में बम बनाना भी सीखा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण ही इन्हें भगत सिंह के साथ आजीवन कारावास की सजा भी हुई। और अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो में से एक रहे ज्योति प्रकाश निराला के बारे में, जिनका जन्म 15 नवंबर 1986 को रोहतास जिला बिहार में हुआ और शहादत हुई 18 नवंबर 2017 जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में शहीद होने वाले कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश निराला को 26 जनवरी 2018 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांबाज निराला को मरणोपरांत यह सम्मान दिया, जिसे उनकी पत्नी और मां ने ग्रहण किया। ज्योति प्रकाश निराला 18 नवंबर 2017 को लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन में शामिल थे। उन्होंने इसमें 3 आतंकियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान फायरिंग में ज्योति प्रकाश निराला शहीद हुए। और रेणु, ज्योति प्रकाश निराला के पहले फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेकों को 1971 के युद्ध में अद्भुत साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया और स्वागन स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को भी 1984 में अशोक चक्र दिया गया था।
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की।
Today is the birthday of Owen Wilson, who is an American actor, producer and screenwriter. He has had a long association with filmmaker Wes Anderson, with whom he shared writing and acting credits for Bottle Rocket and The Royal Tenenbaums, the latter of which earned him a nomination for the Academy Award for Best Original Screenplay. Aur Ravi, aapko yahan par hum sunwate hain unki movie Marley and Me ka ek bahut hi pyara sa dialogue.
Ji.
How you doing there, buddy? Kind of a big day for you. Listen to the radio. Awkward silences. You like that? You like Bob Marley? Bob. Would that be a good name? Bob. Bob. Come here, Bob. Or Robert, when you got older, more dignified. Marley? You like that? That has a nice ring to it.
तो अब बात करते हैं रेणु, राजा राम वांगकुंडरे शांताराम यानी कि वी शांताराम के बारे में, जो एक कुशल निर्देशक, फिल्मकार, बेहतरीन अभिनेता थे। आपका जन्म हुआ 18 नवंबर 1901 कोल्हापुर और निधन हुआ 30 अक्टूबर 1990 में। हिंदी फिल्मों में बतौर निर्देशक शुरुआत करने वाले वी शांताराम ने डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, अमर भोपाली, झनक झनक पायल बाजे, दू आंखें बाराहत और नवरंग जैसी विविधतापूर्ण और गूढ़ अर्थों वाली फिल्में बनाकर अलग अलग मुकाम हासिल किया था।
जिंदगी जिंदगी कोई सपना नहीं, जिंदगी कोई सपना नहीं, जिंदगी 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 जिंदगी।
रेणु, वी शांताराम एक चलते फिरते संस्थान थे जिन्होंने फिल्म जगत में बहुत ही सम्मान हासिल किया। अन्ना साहब के नाम से मशहूर वी शांताराम को वर्ष 1985 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। च चलते चलते आज का विचार कि अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिक पर नहीं। तो इसी विचार के साथ इजाजत दीजिए रवि कपूर और रेणु को आज सवेरे कार्यक्रम यही संपन्न करने की।
स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप इज समाचार प्रभात फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन डियर लिसनर्स, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।